ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 18। अध्याय का नाम है जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। श्लोक संख्या 16 का तात्पर्य नहीं है तो उसको पढ़ करके फिर श्लोक संख्या 17 आप लोगों के साथ पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 16 है, अतीव सुललित गति विलास विलसित रुचिर हासलेशावलोक लीलया किंचित उत्तंभित सुंदर भ्रूमंडल सुभग वदनारविंद श्रिया रमाम रमयन्निन्द्रियाणि रमते रमयते। अनुवाद है, केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव अत्यंत लालित्य पूर्ण चाल से चलते हैं, उनकी मंद मुस्कान मनोहर है और जब वे अपनी भ्रुकुटियों को किंचित ऊपर उठाकर लीला पूर्वक देखते हैं तो उनके मुख की सुंदरता बढ़ जाती है और वे लक्ष्मी जी को आनंदित करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्य इंद्रियों का आनंद लेते हैं। श्लोक संख्या 17 मेरे पीछे बोले, तन भगवतो मायामयम् रूपम् परम समाधि योगेन रमा देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेर दुहित्रिभिर् उपेताहसु च तन्भर्तृभिर् उपास्ते इदं चोदाहरति तन्भगवतो मायामयं रूपं परम समाधि योगेन रमा देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेर दुहित्रिभिर् उपेताहसु च तन्भर्तृभिर् उपास्ति इदं चोदाहरति तन्भगवतो मायामयं रूपं परम समाधि योगेन रमा देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेर दुहित्रिभिर् उपेताहसु च तन्भर्तृभिर् उपास्ते इदं चोदाहरति। शब्दार्थ बोलिए, तत् वह भगवतः श्री भगवान का मायामयम भक्तों के लिए स्नेह से पूरित रूपम रूप परमा सर्वोच्च समाधि योगेन प्रभु की सेवा में मन तल्लीन होने से रमा लक्ष्मी देवी दिव्य नारी संवत्सरस्य संवत्सर नामक रात्रिषु रात्रि में प्रजापते है प्रजापति की दुहित्रिभी पुत्रियों के साथ उपेत मिलकर आहासु दिन में च भी तन्भर त्रिभी पतियों के साथ उपास्ते पूजा करती हैं। इदम यह च भी उदाहरति जप करती हैं। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, लक्ष्मी जी संवत्सर की अवधि में दिन के समय प्रजापति के पुत्रों के साथ और रात्रि में उनकी पुत्रियों के साथ मिलकर परम दयालु कामदेव रूप में भगवान की पूजा करती हैं। भक्ति में तल्लीन रहकर लक्ष्मी जी निम्नलिखित मंत्रों का जप करती हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे कि ये कथा प्रसंग क्या चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी जम्बू द्वीप के अलग अलग वर्षों में भगवान के अलग अलग रूपों का वर्णन कर रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष में भगवान का एक विशेष रूप है और भगवान की उस रूप में पूजा करने वाला कोई विशेष भक्त है। तो जम्बूद्वीप के जो 9 वर्ष हैं तो उसमें सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने इलावृत वर्ष का वर्णन किया। इलावृत वर्ष में भगवान शंकरसन के रूप में विराजमान है और उनकी पूजा करने के लिए जो विशेष रूप से नियुक्त हैं वो शिवजी हैं। इसके बाद फिर भद्रास वर्ष या हरि वर्ष, कुछ आगे पीछे क्रम थोड़ा आगे पीछे है। तो हरि वर्ष में भगवान नरसिंह देव के रूप में विराजमान हैं, उनकी पूजा करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त हैं प्रहलाद जी। फिर भद्रास वर्ष में भगवान हयग्रीव के रूप में विराजमान हैं, उनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं भद्रश्रवा। और अब यहाँ जो वर्णन आ रहा है केतुमाल वर्ष का, कि तो केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव के रूप में विराजमान है और उनकी पूजा करती हैं लक्ष्मी जी, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तन भगवतो मायामयम रूपम, ये भगवान का जो रूप है वो मायामय रूप है। तो मायामय की व्याख्या प्रभुपाद करेंगे, तात्पर्य में हम सुनेंगे उसको, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान का जो रूप है ये मायामय रूप है। तो मायामय का मतलब है बहुत आकर्षक, बहुत आकर्षक। और माया का अर्थ ये भी होता है कि इतना आकर्षक है भगवान का रूप कि आप सब कुछ भूल जाएं, भौतिक संसार की सब सुखों को आप भूल जाएं, इतना जो है भगवान का आकर्षण है। तो ये भगवान का जो कामदेव के रूप में भगवान है, तो ये कामदेव देवता नहीं है बल्कि भगवान स्वयं कामदेव है। और जब भगवान कामदेव का रूप धारण करें तो वो जो देवता कामदेव है उसका कुछ महत्व ही नहीं है, जब भगवान कामदेव का रूप धारण करें, है ना। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि तन भगवतो मायामयम रूपम परम समाधि योगेन रमा देवी, परम समाधि योग में रमा देवी लक्ष्मी जी उपासना करती हैं। उनका जो है जो योग है वो कैसा योग है, परम समाधि का योग है लक्ष्मी जी का, है ना। तो यहाँ जो है ये भगवान का जो कामदेव रूप है ये भौतिक काम नहीं है, ये इंद्रिय तृप्ति, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति जिसमें होती है वो उस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बल्कि ये भगवान का ये रूप जो है ये आध्यात्मिक काम है। आध्यात्मिक काम का मतलब है प्रेम। तो यहाँ पर परम समाधि योग, लक्ष्मी जी जो है परम समाधि योग में भगवान की उपासना करती हैं। लक्ष्मी जी का जो प्रेम है वो बढ़ जाता है, प्रेम में काम में बड़ा अंतर है। जो प्रेम है वो कृष्ण की तृप्ति, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य होता है वो प्रेम कहलाता है, और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य होता है वो काम कहलाता है। तो लक्ष्मी जी का जो भाव है भगवान के प्रति वो प्रेम का भाव है। तो ये परम समाधि योग है, तो लक्ष्मी जी की परम समाधि का जो है योग बन जाता है उस समय, परम समाधि योगेन रमा देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेर दुहित्रभिः। तो रात्रि में संवत्सर नाम के प्रजापति की जो कन्याएं हैं वो उनके साथ लक्ष्मी जी उपासना करती हैं भगवान कामदेव की। तो संवत्सर प्रजापति है, संवत्सर का मतलब होता है वर्ष, और ये जो वर्ष है तो उसकी जो है रात्रियां, वर्ष में जितनी भी रात्रियां हैं वो उसकी कन्याएं हैं। संवत्सर प्रजापति है, प्रजापति जो अच्छी संतान उत्पन्न करे वो प्रजापति कहलाता है। तो जो वर्ष है संवत्सर, तो ये प्रजापति है और उसकी जो है कन्याएं बड़ी श्रेष्ठ कन्याएं हैं। तो आप लोग जानते हैं वर्ष में कितनी रात्रियां हैं, 360। तो वर्ष जो संवत्सर रूपी प्रजापति है, इनकी जो है 360 कन्याएं हैं। तो इन कन्याओं के साथ लक्ष्मी जी भगवान कामदेव की उपासना करती हैं। तो प्रत्येक रात्रि में एक एक जो कन्या है वो लक्ष्मी जी के साथ रहती है। इस प्रकार से पूरे वर्ष में ये 360 कन्याएं लक्ष्मी जी की बारी बारी से जो है साथ रहती हैं, उपासना में साथ देती हैं, है ना। तो रात्रिषु प्रजापते दुहित्रभिः उपेताः, और दिन में लक्ष्मी जी संवत्सर के जो कन्याएं हैं इनके पतियों के साथ उपासना करती हैं। तो इनके पति कौन है, दिन। तो वर्ष में जितनी रात्रियां होती हैं उतने दिन भी होते हैं, कितने होते हैं, 360। तो 360 दिन होते हैं। तो प्रजापति के ये कौन है, दामाद हैं, उसमें बताया गया है दुहित्रभिः उपेताः सो तद भर्तृभिः उपास्ते, ये भर्ता है, उनके भर्ता है। तो इसका मतलब है कि जो वर्ष जो संवत्सर रूपी प्रजापति है उसकी कन्याएं रात्रियां हैं, तो ये जो है दामाद हुए, पुत्र नहीं हुए, दामाद हुए। तो प्रत्येक दिन एक एक जो है जो दिन का देवता है जो इनके भर्ता है, तो रात में जो है कन्या जो है लक्ष्मी जी के साथ उपासना करती हैं, और दिन में उसका पति उसी कन्या का जो पति है वो लक्ष्मी जी के साथ भगवान कामदेव की उपासना करते हैं। इदम चोदाहरती, और ये वो जो है बोलती हैं, जप करती हैं मंत्र। लक्ष्मी जी किस मंत्र का जप करती हैं वो अगले श्लोक में आएगा। तो वहाँ तो हम नहीं जा रहे हैं कि कौन से मंत्र का वो जप करती हैं लक्ष्मी जी, लेकिन अभी यहाँ हम तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में प्रयुक्त मायामयम शब्द का अर्थ मायावादियों की विवेचना के अनुसार नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो मायावादी कृष्ण अपराधी, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी कृष्ण अपराधी। कभी कभी भगवान को मायामय कहा जाता है, तो मायावादियों को मौका मिलता है अपराध करने का, और वो कहते हैं कि हाँ भगवान का रूप माया है, भगवान की लीलाएं माया है। ये माया शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो ये है माया कि मतलब मां का मतलब नहीं, या माने जो जो नहीं है, तो उनको मौका मिलता है कि भगवान का रूप मायामय है, तो इसका मतलब कि भगवान का रूप ही माया है, है? और वो जो है सत्य नहीं है, मिथ्या माया है ना। तो इस तरह से वो जो है अपराध करते हैं भगवान का। लेकिन जब भगवान को कभी मायामय कहा जाता है तो माया का मतलब स्नेह भी होता है। तो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो हमें वैष्णवों के द्वारा जो शास्त्रों की व्याख्या है वो सुननी चाहिए, अपराधियों के द्वारा नहीं सुननी चाहिए। भगवान का जो रूप है वो इतना दिव्य है, भगवान का जो रूप है, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण कितना पवित्र है, पवित्रम परमम भवान, परम पवित्र है, तो उसको आप मिथ्या कहने का साहस कैसे करते हैं। उसको माया कहने का साहस क्यों करते हैं? तो माया शब्द जो है यहां भगवान का जो रूप माया मय है, इसका अर्थ नहीं है कि भगवान जो है मिथ्या है और वास्तविक नहीं है, भगवान का रूप वास्तविक नहीं है। तो वो जो मायावादी लोग हैं वो फिर कहते हैं भाई निराकार ही सत्य है और ये साकार जितने भी रूप हैं निराकार से होते हैं और फिर निराकार में मिल जाते हैं, ये जो है अनित्य है, भगवान के सब रूप अनित्य हैं। तो ये अपराध है। तो इस अपराध से बचाने के लिए हमारे वैष्णव आचार्य जो है बड़ी कठोरता से इन व्याख्याओं का विरोध करते हैं, क्योंकि वो मायावादियों का जो भाष्य है ये कहा जाता है मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश, तो आपकी भक्ति का जो है सर्वनाश हो जाएगा। मायावादियों का भाष्य सुनने से अपनी भक्ति का सर्वनाश हो जाएगा, है ना। और फिर उसको पुनरुज्जीवित करने में बहुत समय लगेगा। एक बार सुन लिया तो सर्वनाश हो गया, अब उसको जीवित करने में कितना आपको समय लगेगा, कितना परिश्रम होगा, वो आप सोच नहीं सकते कितना आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं प्रभुपाद जो है हमें अच्छी प्रकार से तैयार कर देते हैं कि अगर कभी सुनना हो तो आपको जो है कैसे सुनना है, कैसे समझना है, और उसको जो है अंदर से आपको स्वीकार नहीं करना है, आप सुन करके बाहर ही बाहर निकाल देंगे, आप उसको अंदर जाने नहीं देंगे। तो जो मायावादियों की व्याख्या है ये अगर आपके अंदर चली गई और हृदय के अंदर चली गई भक्ति का सर्वनाश कर देगी। तो आप जो है इतने पक्के हो जाइए कि अगर कोई बोलता है कुछ भी बोलता है तो उसको बाहर ही निकाल दीजिए, अंदर जाने ही नहीं पाए, क्योंकि हृदय में जो है आपके भगवान का अगर वास्तविक रूप अगर जम जाए तो मायावादियों की जो व्याख्या है, मायावादियों के जो विचार हैं, वो आपके हृदय के अंदर नहीं जाएंगे। आप जो है इतना पक्का कर लो अपने हृदय को कि ये जो विचारधारा है ये दूर से ही आप इसको आप छोड़ सकते हैं। कान के अंदर जाए उसको दिल से निकाल देना है, दिल के अंदर नहीं जाना चाहिए, है? तो ये जो है इसलिए प्रभुपाद बहुत आवश्यक समझते हैं। कहीं भी अगर ऐसे शब्द आते हैं जहाँ कि हम भ्रमित हो सकते हैं और किसी को मौका मिलता है उल्टी व्याख्या करने का, तो प्रभुपाद पहले से ही हमें सचेत करते हैं। इसलिए भक्ति वेदांत तात्पर्यों की बहुत आवश्यकता है ना, क्योंकि मायामयम शब्द है और कोई भी व्यक्ति कह देगा कि हाँ भाई सर्वम मायामयम जगत, तो ये जगत मायामय है, तो भगवान भी मायामय है ना। तो माया का मतलब अनित्य भी होता है, तो भगवान का भी रूप अनित्य है, लेकिन भगवान का रूप अनित्य नहीं है। भगवान जो है यहाँ केतुमाल वर्ष में विराजमान है और वो जो है नित्य विराजमान है, और उनका जो सौंदर्य है अपने सौंदर्य से लक्ष्मी जी को मोहित करते हैं, और लक्ष्मी जी मोहित होती हैं तो वो परम समाधि योग है। जो गोपियाँ भी कृष्ण से प्रेम करती हैं तो समाधि की बहुत ऊंची अवस्था, गोपियों की समाधि की बहुत ऊंची अवस्था है, क्योंकि भगवान का ये जो रूप है और स्त्रियों के लिए विशेष रूप से जो आकर्षक लगता है तो उसमें वो खींच लेता है, बहुत तेजी से भगवान जो है वो मन को आकर्षित करते हैं। तो जो भगवान का ये जो रूप है वो बहुत आकर्षक होता है, और चित्त वृत्तियां जो है सब छिन जाती हैं, उनका जो है कार्य सब जो है केंद्रित हो जाता है भगवान में, चित्त केंद्रित हो जाता है, भगवान का ये रूप इतना सुंदर है, है ना। और इस भौतिक संसार में अगर कोई सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष अगर होते भी हैं और वो अगर इसमें कुछ आकर्षण का अनुभव करते हैं तो वो छाया मात्र है। भगवान कृष्ण का जो आकर्षण है गोपियों के प्रति, या गोपियों का आकर्षण कृष्ण के प्रति या लक्ष्मी के प्रति, तो उसकी छाया मात्र है और छाया बदलती रहती है। तो ये भौतिक संसार में वो सुख है नहीं, और वो प्रारंभ में जो अमृत की तरह होता है वो परिणाम में विष बन जाता है। तो इसलिए ये नकल करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, कुछ समय के लिए अगर सुंदरता आती है, जवानी आती है, तो फिर वो जवानी चली जाती है, सुंदरता चली जाती है, और उसके स्थान पर क्या मिलता है, निराशा, निराशा दुख, किससे और कुछ नहीं मिलता है। इस भौतिक शरीर से हम ये जो माधुर्य रस है इसका आस्वादन नहीं कर सकते हैं। लेकिन माधुर्य रस का आस्वादन जो है, अगर करना है तो अपने शरीर को पहले मृत्यु से बचाओ। आप जो है अपने शरीर के द्वारा आप मृत्यु को जीतो पहले, तब कहीं आप इस रस का आस्वादन कर सकते हैं। तो ये भगवान का है, ये जो है रस है, भगवान इस रस का आस्वादन करते हैं और आस्वादन कराते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि इस श्लोक में प्रयुक्त मायामयम शब्द का अर्थ है मायावादियों की विवेचना के अनुसार नहीं ग्रहण करना चाहिए। माया का अर्थ प्रेम तथा मोह है, दोनों हैं। तो भगवान जो है मतलब बहुत प्रेममय है और मोह मोहित करते हैं, इसलिए भगवान को कभी मोहित मोहन कहा जाता है। मोहन तो मायामय का मतलब मोहन भी है, कि वे इतना मोहित करते हैं, इतना मोहित करते हैं कि आप जो है आपका सब मोह समाप्त हो जाता है, भौतिक संसार का मोह समाप्त हो जाता है। भगवान मोहित करते हैं, और मोह का मतलब पागलपन भी होता है। हाँ, कि जो भक्त होते हैं वो भगवान के प्रेम में पागल हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु पागलपन प्रकट करते थे, राधा रानी पागलपन प्रकट करती थी। तो मोह का मतलब पागलपन है। तो भगवान का जो मायामय रूप है ये भक्तों को और स्त्रियों को पागल बना देता है ना। तो वो जो अवस्था होती है वो मतलब एक प्रकार से सब कुछ आप भूल जाते हैं, अपने को ही भूल जाते हैं, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। आपको क्या करना है वो भी आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है। तो ये जो है मतलब भगवान का रूप ऐसा मोहन है, ऐसा मोहन है, ऐसा मायामय है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं माया का अर्थ प्रेम है और मोह दोनों है। तो भगवान प्रेम करते हैं तो वे माया है। भगवान का प्रेम है तो भगवान बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेम करते हैं, भगवान के अंदर प्रेम है, है? तो भगवान के अंदर अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं है। भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, और इस कामदेव के रूप में भगवान जो है प्रेम देते हैं, प्रेम करते हैं। और दूसरा है मायामय का मतलब वो जो है मोह भी उत्पन्न करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं। तो भगवान स्वयं आकर्षित होते हैं अपने भक्तों के प्रति या लक्ष्मी जी के प्रति, और लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं। तो दोनों जो है बातें हैं ये मायामय कहलाती हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं जब माता अपने बालक को प्यार करती है तो वह मायामय कहलाती है। इस भौतिक जगत में अगर कुछ तुलना दी जा सकती है प्रेम की, तो वो माता और बालक की होती है, केवल एक उदाहरण, और वो भी जब छोटा बच्चा हो, नवजात बालक हो, उस समय माता नहीं सोचती है कि ये मेरे लिए क्या करेगा। उस समय माता जब अपने पुत्र की देखभाल करती है, जब नवजात है, तो उसका जो प्रेम है वो शुद्ध होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो माता की आशाएं पनपने लगती हैं। अभी ये मेरे लिए, मैं इसके लिए कर रही हूँ, आगे मेरे लिए करेगा, तो ये मेरे लिए क्या करेगा, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगी, मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगी, ये बड़ा होगा, ये जो है बड़ा ऑफिसर बनेगा, मेरा भी सम्मान होगा, मैं इसकी माता कहलाऊंगी, लोग मेरे भी हाथ जोड़ेंगे, और हाँ मेरा भी बड़ा अच्छा सम्मान होगा, और मुझे भी अच्छी रहने की जीवन की सुविधाएं मिलेंगी। तो माता जो है आशा करती, तो वो प्रेम फिर क्या है कि स्वार्थ से दूषित हो जाता है। लेकिन जब माता अपने बच्चे को देखती है कि बिल्कुल असहाय है, ये तो इसको हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं है, और इसको मच्छर अगर काटे तो मच्छर को भी नहीं भगा सकता है, तो माता को जैसी चिंता होती है, जैसा होता है सेवा की भावना, तो वो जो है शुद्ध है। इसलिए प्रभुपाद उस प्रेम का जो जो तुलना कर रहे हैं, प्रेम की तुलना कर रहे हैं भगवान का जो भक्तों के साथ में है, या कामदेव, भगवान कामदेव का लक्ष्मी जी के साथ है, वो तुलना किससे कर रहे हैं? माता और पुत्र से कर रहे हैं। इस भौतिक संसार में स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है उससे तुलना नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद। स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति पर आधारित होता है, इसलिए प्रभुपाद उससे तुलना नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद तुलना कर रहे हैं, जब माता अपने बालक को प्यार करती है तो वह मायामय कहलाती है। भगवान विष्णु चाहे जिस रूप में प्रकट हों, वे अपने भक्तों पर सदैव स्नेहल रहते हैं। स्नेही है भगवान, बहुत स्नेही हैं। हैं, ये नहीं समझना कि भी लक्ष्मी जी के वश में हो गए तो अब जो है वो भक्तों को भूल गए। होता है ना, हाँ, कि जब लड़के की शादी होती है और पत्नी में अगर उसका ज़्यादा अनुराग होता है तो माता पिता की सेवा फिर वो छोड़ देता है, माता पिता को ही छोड़ देता है ना। तो ऐसे नहीं है भगवान, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, वे अपने भक्तों पर सदैव स्नेह लेते हैं, अतः यहाँ मायामयम शब्द का व्यवहार भक्तों के प्रति अत्यंत स्नेहल अर्थ में हुआ है। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, इस संबंध में मायामयम का एक अर्थ है कृपा प्रचुरम, अत्यधिक दयालु भी है। मायामयम, मय का मतलब भरा हुआ है, जैसे हम कहते हैं अंधकारमय, ये कमरा अंधकारमय है तो क्या अंधकार से भरा है? कभी कहते हैं ये कमरा प्रकाशमय है तो प्रकाश से भरा हुआ है, तो मय का मतलब भरा हुआ। तो मायामयम का मतलब क्या है? भगवान माया से भरे हुए हैं। और माया का मतलब क्या है? जीव गोस्वामी कहते हैं कृपा। तो मायामय का मतलब क्या हुआ? कृपामय। तो भगवान कृपामय है, कृपा प्रचुरम। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार से वीर राघव कहते हैं माया प्रचुरनात्मीय संकल्पेन परिगृहितम इत्यर्था ज्ञान पर्यायोत्र माया शब्दः। जब अंतरंग संबंधों के कारण कोई अत्यंत स्नेहल होता है तो उसे मायामय कहा जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मायामयम को माया तथा आमयम शब्दों में विभक्त करके व्याख्या की है। वे इन शब्दों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि चूंकि जीवात्मा मोह रोग से घिरा है, अतः भगवान अपने भक्त को माया के चंगुल से छुड़ाने और माया के कारण उत्पन्न रोग से छुड़ाने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बड़ी अच्छी व्याख्या लिखी है। मायामयम का मतलब क्या है? आमय का मतलब रोग है, तो माया आमयम है, तो जो भगवान माया के रोग को दूर कर रहे हैं इसलिए भगवान को मायामयम कहा गया है ना, मायामयम है ना। तो ये भी अर्थ, तो हम किसी भी शब्द के ऐसे अर्थों को स्वीकार करें जो कि वैष्णव सिद्धांत के अनुसार होते हैं। तो मायामय शब्द के जो है कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन जो वैष्णवों के सिद्धांत के अनुसार होते हैं वो हम ग्रहण करते हैं। मायावादियों के सिद्धांत के अनुसार जो अर्थ होते हैं उनको हम ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि शास्त्र से मेल नहीं खाते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, प्रमाण जो है शास्त्र है, इसी किसी भी अर्थ का, किसी भी शब्द का जो अर्थ है वो शास्त्र के प्रमाण पर आधारित होना चाहिए, है ना। अगर आप अर्थ करते हैं मायामयम शब्द का कि अनित्य है, माया का मतलब अनित्य है, मिथ्या है, तो वो शास्त्र से मेल नहीं खाता ये अर्थ, क्योंकि भगवान के जितने भी रूप हैं वो वैकुंठ जगत में रहते हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। भगवान कृष्ण जब आते हैं इस पृथ्वी पर तो उनके जितने भी अवतार हैं वो अलग अलग वैकुंठों से आकर के भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जितने भी अवतार हैं उनके अपने अपने वैकुंठ हैं। तो भगवान का रूप ना तो मिथ्या है ना अनित्य है, भगवान का रूप जो है सच्चित आनंद विग्रह, सच्चित आनंद, तीनों चीजें हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वो समाप्त हुआ। अब इस संबंध में हम कुछ घटना सुनेंगे गर्ग संहिता के अंदर से, अच्छा पहले मैं इन दो श्लोकों का हिंदी पद्यानुवाद सुना देता हूँ। विष्णुप्रिया देवी ने लिखा है, श्लोक संख्या 16 का जो हिंदी पद्यानुवाद है, अति सुंदर है उनकी चाल, मधुर मधुर है मंद मुस्कान, मनहर लीला मई चितवन है, उठी भ्रुवों की छटा महान, करबद्ध हुए प्रभु राशि राशि, निसौंदर्य बिखेर रहे, सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को वे हैं आनंदित कर रहे, स्वयं भी अपनी छटा से वे आनंदित होते रहते हैं, केतुमाल वर्ष में उनके रूप माधुर्य ही ऐसे हैं। अब श्लोक संख्या 17 का है पद्यानुवाद है, महा माया मैं उस रूप की, लक्ष्मी करें आराधना, निज समाधि योग से प्रभु की वे करें उपासना, रात्रि के समय संवत्सर की कन्याएं उनके साथ रहें, दिवस में उनके पति सभी आराधन में वे साथ दें, इस मंत्र का जाप वे करती हुई स्तुति प्रभु की गाती हैं, निज प्रियतम को ये मंत्र सुना लक्ष्मी जी रिझाती हैं। हरि बोल। तो ये तो हिंदी पद्यानुवाद हुआ दो श्लोकों का। गर्ग संहिता में भगवान कृष्ण का चरित्र बहुत विस्तृत है और इसमें एक विश्वजित खंड है जिसमें एक ऐसी घटना का वर्णन है कि महाराज उग्रसेन जो द्वारका में रहते हैं विश्वजित यज्ञ करते हैं और विश्वजित यज्ञ करने के लिए आवश्यक है कि जितने भी राजा हैं सबको पराजित किया जाए। तो प्रद्युम्न जी जम्बू द्वीप के सभी स्थानों में जाते हैं, भारतवर्ष के अलावा भी जितने वर्ष हैं सभी वर्षों में जाते हैं और सभी राजाओं से कर वसूल करते हैं और उनको निमंत्रित करते हैं कि उस यज्ञ में आए। तो इसमें बताया गया है, ये कथा नारद जी सुना रहे हैं और किसको सुना रहे हैं, राजा बहुलाश को जो मिथिला के राजा हैं। हे राजन, इस प्रकार रम्यक वर्ष को जीतकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न सुमेरु की पूर्व दिशा में विद्यमान केतुमाल खंड को गए। केतुमाल का सीमा पर्वत माल्यवान पर्वत है जहां महापातक नाशनी चक्षुर नामनी गंगा बहती है। गंगा की चार धाराएं हैं, पूर्व दिशा में जो धारा है वो चक्षु नाम की धारा है तो वो इधर जाती है, केतुमाल वर्ष में जाती है। माल्यवान के बगल में मन्मथ शालिनीपुरी है, उसका परकोटा रत्नों से बना हुआ है, उसमें विविध मणियों से बने महल हैं। बहुत ऐश्वर्य है, केतुमाल पर्वत में बहुत ऐश्वर्य है, मणियों से बने महल हैं। इससे देवधानी इंद्रपुरी जैसी इसकी शोभा होती है। यहाँ के सभी पुरुष कामदेव के समान सुंदर होते हैं। तो भगवान केवल नहीं है बल्कि सभी पुरुष कामदेव के समान सुंदर होते हैं। शरतकालीन कमल जैसे उनके श्याम शरीर कमल दल सदृश उनके नेत्र होते हैं। वहाँ की सभी स्त्रियाँ पीतांबर और पुष्पहार पहनती हैं। नव यौवना नारियाँ गेंद खेलती हैं, उनके शरीर की सुगंधि से मस्त भौरे गुंजार करते हैं। स्त्रियों के शरीर की सुगंध कैसी है कि भौरे गुंजार करते हैं सुगंध से, है ना। यहाँ तो हमारा शरीर चाहे स्त्री का हो पुरुष का हो सब शरीर दुर्गंध युक्त है, पसीना निकलता है तो दुर्गंध ही फैलती है, है ना। लेकिन वहाँ जो है वो सुगंधि 100 योजन तक फैलकर सारे प्रदेश को सुगंधित करती है। स्त्रियों के शरीर की जो सुगंध है वो 100 योजन तक जाती है। 100 योजन जानते कितना है, 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तक सुगंध जाती है, है ना। और यहाँ का जो शरीर है वो जो है दुर्गंध फैलाता है, है ना। और ऐसे में भी स्त्रियों के शरीर को जो है दिखाया जाता है, इधर से काट दिया इधर से काट दिया, शरीर दिखाने की कोशिश करते हैं जिसमें दुर्गंध निकल रही है उसको जो है दिखाया जाता है। जबकि वहाँ जिनके शरीर से सुगंध निकलती है वो शरीर का प्रदर्शन नहीं करती स्त्रियाँ। वहाँ की स्त्रियाँ जो है जिनका शरीर इतना सुंदर है सुगंधित है तो भी शरीर का प्रदर्शन नहीं करती कि इधर से कपड़ा काट दिया तो शरीर दिखाई पड़ रहा है, इधर से कपड़ा काट दिया शरीर दिखाई पड़ रहा है, है ना। ऐसा नहीं है, है ना। दुर्गंधयुक्त शरीर है उसको भी दिखाने के लिए कपड़ा काटते हैं, इधर से काटा पीछे से काटा इधर से आगे से काटा इधर से काटा उधर से काटा, है ना, और दुर्गंध फैला रहे हैं, है? वो शरीर दिखाया है, शरीर के प्रदर्शन करते हैं, आजकल के ये फैशन है ना, इधर से कपड़ा काटा उधर से कपड़ा काटा, वो शरीर दिखा रहे हैं, दुर्गंध फैल रही है उसमें, है ना। जिनके शरीर में सुगंध निकल रही है वो तो अपने शरीर को ढके हुए हैं वस्त्र आभूषण, उससे उनकी सुंदरता बढ़ती है। यहाँ जो है वो दुर्गंध है, शरीर में दुर्गंध है, उसी में जो है और प्रदर्शन करते हैं शरीर का, ये शरीर दिखा रहे हैं अपना, है ना। तो यहाँ बताया कि सुगंधित है शरीर। उस नगरी के बहु श्रुत निवासी घरों से निकलकर भगवान श्री कृष्ण के विमल यश गा रहे थे। केतुमाल वर्ष में जब प्रद्युम्न जी गए तो केतुमाल वर्ष के जो स्त्री पुरुष हैं वो भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, कि भगवान कृष्ण की सब लीलाएं हो चुकी हैं, हैं ब्रज में जो लीलाएं हो चुकी हैं, हैं गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में, अभी तो भगवान द्वारका में है, तो उन लीलाओं का गान कर रहे हैं केतुमाल वर्ष के लोग, हैं जो भगवान की हो चुकी हैं। तो लीलाओं का गान कर रहे हैं और प्रद्युम्न जी उसे सुन रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो कितना दूर है भारतवर्ष से, केतुमाल वर्ष कितना दूर है, है? यहाँ के लोगों को जो है ये सूचनाएं पता हैं, ये सब लीलाएं पता हैं। केतुमाल के निवासी कह रहे थे, शेष साई विष्णु भगवान देवताओं की प्रार्थना करने पर संसार का कष्ट हरने के लिए साक्षात ईश्वर आदिदेव अखिल भवन के रक्षार्थ अवतरित हुए उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार है। आशित शेष नो जगदार्तिहारी साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर आदिदेव या प्रार्थिता सुरवरेर भवना बनाय तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। जो जन्म के साथ ही माता पिता को बंधन मुक्त करके पिता के घर से नंद के घर गए, उस समय वे शिशु रूप में थे, सो नंद रानी ने बड़े प्रेम से उनका लालन पालन किया, वे मंगल धाम थे, उन्होंने ही पूतना को मारा था। जातो गता पितृगृहं पितरो विमोक्षे नंदालयं शिशु तनुः सतु नंद पत्न्या संलालिता सघृणया बहु मंगल श्री प्राण प्रहार मकरोत किल पूतनाया। जो उसी बाल्यावस्था में शयन करते हुए सकट को जिन्होंने तोड़ डाला, अद्भुत दैत्य तृणावर्त की पीठ पर चढ़कर उसके प्राण ले लिए, बाद में इन्होंने माता यशोदा को अपना निजी रूप दिखाया, महामुनि गर्ग ने इनके लिए सुंदर भाग्य की भविष्यवाणी की। बालो बभंज सकटम शयनम प्रकुर्वन दैत्यम ने पातमान अद्भुतकम च पृष्ठे मात्रे प्रदर्शन निज रूपे मलंकृतो भून गर्गेण संकटित सुंदर भाग्य लक्ष्मी। नवनीत के चोर श्री कृष्ण को ब्रजवासियों ने बहुत प्यार किया। अत्यंत कोमल मनोहर बाल रूपधारी श्री कृष्ण जब दधि पात्र फोड़कर दही खा गए तो माता ने इनको उखल से बांध दिया, छोटी सी रस्सी से बंधे ही बंधे इन्होंने यमलार्जुन वृक्ष उखाड़ डाले। वृंदावन में वृषण और गोप बालकों के साथ विचरते समय इन्होंने वत्सासुर को मारकर उसी के शव से कैथे के वृक्ष उखाड़े, तब यमुना तट पर तीखी चोंच वाले बकासुर को तिनके की तरह चीर डाला। वृंदावन से विचरण सह वत्स गोपेन वत्सासुरम समिनिमात्य कपित वृक्ष सद्यो विग्रह खर तुण्य पुटे च दुर्भ्याम दैत्यम नदार सबकम तृणवत्त टिन्याम। वृंदावन गोप बालकों के साथ बछड़ों के झुंड घेरते और बंसी बजाते हुए इन्होंने परम मोहक रूप धारण किया, अघासुर के मुख में समाये हुए गोप बालकों की रक्षा की। बाद में ब्रह्मा जी उन सभी गोप बालकों और बछड़ों को चुरा ले गए तो भगवान स्वयं गोप बालक और गोप बछड़े बन गए। इस प्रकार क्षेत्रज्ञ आत्म पुरुष भगवान अनंत पूर्ण प्रधान पुरुषेश्वर और आदिदेव भगवान ने मानव रूप धारण करके विहार करते हुए ब्रह्मा तथा गोप बालकों को मोह में डालकर उनके साथ ब्रज में विचरे। बाद में उन्होंने बलवान धिनकासुर को उठाकर ताल के वृक्ष पर दे मारा, कालिया नाग को दंड देकर उसके प्रत्येक फण पर नृत्य किया। फिर इन्होंने दावा नल का पान किया। इसके बाद बड़े भाई बलदेव जी के साथ जाकर अपने जोरदार घूंसे से प्रलंबासुर का वध कर दिया। चिक्षेप धनुक मसौ बलिनम बलेन ताले प्रग्रह सहसा फणिकालियाख्यम बभ्राम बहन मापिबन दुनजम प्रलंबम सद्यो जघान सबले दृढ़ मुष्टि नाचा। वन में गौ चराते समय ब्रज बालाओं को मोह लेने वाली बंसी बजाई और ब्रज की ललनाओं ने इनकी कीर्ति गाई। बाद में इन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए, ब्राह्मणियों का दिया हुआ भात खाया। संचारयन ब्रज मधुर मधुरम कोनन यो वेणुम बने ब्रज मधु निज गीत कीर्ति दिव्यांबराण सजहार भरांगना नाम ये प्रांगनाभिरभिता कृत भक्त भोजह। जब इंद्र ने घनघोर वर्षा की तब कृपा करके पशुओं की रक्षा के लिए एक साधारण बालक की तरह समूचे गोवर्धन पर्वत को कठफुल्ले की तरह उठा लिया और 7 दिनों तक केवल एक हाथ से उसको वैसे ही उठाए रखा जैसे कोई हाथी कमल का फूल उठाए रहे। तब हार मानकर इंद्र ने इनकी स्तुति की। देवे च वर्षति पशून कृपया रिक्षुन गोवर्धनम प्रकृत बाल एवो छिलेन्द्रम बिभ्रन गिरिम स गजरा डिब कंज मेकन हस्ते सचीपति वभो भीरत हस्तु तो भू। वरुण के पास में बंधे नंद जी को बचाकर सभी ब्रजवासियों को मायातीत वैकुंठ धाम दिखाया। तदनंतर यमुना तट पर रास मंडल रचाकर सुंदरी गोपियों के साथ रमण किया। कामदेव के आवेग से जिन ब्रजवधूटियों को अपने यौवन का अभिमान हो गया उनका अभिमान चूर करते हुए ये वहाँ ही अंतर्धान हो गए। तब व्याकुल ब्रजवालाओं ने गोपी गीत गाया। जब वे बहुत ही बेरहतुर हो गईं तब वन परम मनोहर स्वरूप और वनमाला धारण करके उनके समक्ष प्रकट हुए। मानम हरन मदन यौवन माननी नाम अंतर ददे ब्रजवधु निज गीत कीर्ति सृग्वी मनोहर वपुर विरहातुरा नाम साक्षात हरिर मदन मोहन आविराशीन। वृंदावन में ब्रज की श्रेष्ठतम सुंदरियों के साथ ये वैसे ही रमे जैसे अपनी विभूतियों के साथ आदिदेव श्री विष्णु रमे थे। देवता भी जिनकी स्तुति करते थे उन भगवान ने रास रंग में केयूर कुंडल और किरीट से मनोहर श्रृंगार करके रमन किया। इसके बाद इन्होंने नंद को सर्प से छुड़ाया, उस सर्प का को मोक्ष प्रदान किया। फिर संघ चोट से दिव्य मणि छीनी, इस पर गोपों ने उनकी स्तुति की। तदनंतर बैल रूपधारी अरिष्टासुर का सिंह पकड़कर धरती पर पटक दिया। नंदम विमोक्ष पणिने प्रदोच मोक्षम दिव्यम मणिम सच जहार हसंग चूनाम गोपस्थ तो ब्रसव रूप धरम हरिष्टम भूमो निपात निज गान करेण श्रृंगे। कंस ने इन भगवान से अत्यंत भयभीत होकर सघन मेघ सरीखे तुंदिल तथा प्रचंड केसी दैत्य को भेजा। उस भीषण दैत्य को बड़े वेग से अपनी ओर आते देखकर भगवान ने उसके मुख में अपना हाथ डालकर मार डाला, जिसका श्री नारद जी ने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। बहुत पराक्रम संपन्न और भाग्य लक्ष्मी से युक्त उस भीमासुर को उन्होंने मार डाला। अक्रूर द्वारा वर्णित महोदय जिनका था वे भगवान कृष्ण बिरहातुर गोपी जनों के चित्त चोर थे। यो नारदेन बहुवर्णित भाग्य लक्ष्मी व्योमासुरो विसुरकारी परेण येन अक्रूर वर्णित महोदय आदि देवो गोपी जनाति विरहातुर चित्त चौरहा। अपने हितकारी अक्रूर को जल के भीतर दर्शन देकर अपना स्वरूप छिपा लिया। इसके बाद मथुरा पहुंचे और वहां के एक उपवन में टिके। फिर बलदेव और गोपालों को साथ लेकर मथुरा का अवलोकन करने चले। इस प्रकार से बहुत लंबी ये कथा है कि प्रद्युम्न जी सुन रहे हैं केतुमाल वर्ष में वहाँ के जो निवासी हैं वो प्रद्युम्न जी को जानते हैं है? और प्रद्युम्न जी को सुना रहे हैं है? तो प्रद्युम्न जी को बहुत हर्ष हो रहा है, है? तो फिर क्या कहते हैं उन्हीं भगवान कृष्ण ने उग्रसेन का यज्ञ संपन्न करने और जगत को जीतने के लिए अपने पुत्र प्रद्युम्न को भेजा है। प्रद्युम्न के सामने ही बोल रहे हैं कि उन्हीं भगवान ने जो है अपने पुत्र प्रद्युम्न को भेजा है। प्रद्युम्न पृथ्वी के बहुत तेरे राजाओं को जीतकर केतुमाल वर्ष में आए हुए हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो स्वयं जो है प्रद्युम्न जी को भी सूचना दे रहे हैं कि हमें वो सब सूचना मालूम है कि आप किस लिए आए हैं और हम आपको प्रणाम करते हैं। तेनोग्रसेन कृतवेत है जगन विजेतुम संप्रेषितो निज सुता किल संबरारी योत्रागतो भवि विजित्य नृपान समस्तान श्रेय किए तुमल पतये च नमोस्तु तस्मै। तो केतुमाल वर्ष के निवासी प्रद्युम्न जी को ही कह रहे हैं कि केतुमाल पति, केतुमाल के पति प्रद्युम्न जी को हमारा नमस्कार है। तो प्रद्युम्न जी को केतुमाल वर्ष का पति वो स्वीकार कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से नारद जी बोले, हे राजन, उनकी बातों से प्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बहुत से कुंडल, कंकण, हीरे, मती, मोती, मणि, घोड़े और हाथी दिए। उन निवासियों के मुख से ऐसी कृष्ण कथा सुन करके प्रद्युम्न जी उनको उपहार भेंट दे रहे हैं। उस मन्मथ शालिनीपुरी में प्रद्युम्न का एक पूरा वर्ष बीत गया। एक साल यहां पर रहे प्रद्युम्न जी। तब प्रजापति ने नमस्कार करके प्रद्युम्न को भेंट दी। तब प्रद्युम्न दिव्य काम मन में गए, जो काम मन प्रजापति की कन्याओं के लिए गम्य था। ये काम मन विशेष रूप से जहां यहां पर वर्णन हुआ है केतुमाल वर्ष का, तो काम मन प्रजापति की केवल कन्याओं के लिए गम्य है, है? केवल लक्ष्मी जी और प्रजापति की कन्याएं ही जा सकती हैं यहाँ पर, किंतु अन्य लोगों के लिए अगम्य, कोई पुरुष नहीं जा सकता। वो काम मन कामदेव के शस्त्र अस्त्रों से भरा हुआ था। वहां पहुंची हुई स्त्रियों का गर्भ निर्जीव होकर गिर पड़ता था और बाद में साल भर तक उनको पुनः गर्भाधान नहीं होता था। ये काम मन का ऐसा प्रभाव है। तदनंतर उस काम मन से पुष्प धनवा, पंच सहायक, श्याम सुंदर, पीताम्बर धारी मनोहर कामदेव ने निकलकर अपने धनुष का टंकार किया। बाद में कामदेव के बाण से आहत होकर सभी यादव, उनके हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक धरती पर गिर गए, क्योंकि वे सब कामातुर हो उठे थे। कामदेव के बाणों की शक्ति का सही सही वर्णन नहीं किया जा सकता। तदनंतर जगदीश्वरेश्वर प्रद्युम्न कामदेव में वैसे ही विलीन हो गए जैसे जल जल में मिल जाता है। प्रद्युम्न जी भी हैं कामदेव के अवतार हैं, तो कामदेव में विलीन हो गए हैं। तो जितने भी यादव हैं वो सब काम से मोहित हो गए, प्रद्युम्न जी हैं उन्हीं में विलीन हो गए। उनकी ये दशा देख सभी यादव प्रद्युम्न को पूर्ण परमेश्वर जानकर बहुत विस्मित हुए। यद बाण तो यादव पुंगदा, यद बाण तो यादव पुंग वासुतः ससैनिका सा सुगजा पदाति भी निपे निपे तुरा रात केले काम विहेवलास तदबाण वेगस न वर्णनम भवेन अथासुकाश निर्जगदीश्वरेश्वर प्रलीनताम प्राप जले जलम यथा सद्यो विशिष्मुर यदवा ससैनिका विज्ञाए पूर्णम नृप रुक्मणी सुतम। तो प्रद्युम्न जी जब कामदेव में समा गए तो फिर कामदेव का प्रभाव समाप्त हो गया और सब यादव अपने स्वाभाविक स्थिति में आ गए। उन्होंने माना कि प्रद्युम्न जी भी भगवान है, साक्षात भगवान है। तो इस तरह से हमने आज के श्लोक पर कुछ चर्चा की और अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा। या हाँ, हैंड माइक नहीं है। आवाज ज्यादा गूंज रही है, आप बिना माइक के बोलेंगे? हाँ, हाँ, इनका प्रश्न है कि जहां से सुगंध आती है वहां से गोलोकधाम नहीं जा सकता। नहीं, ये जो केतुमाल वर्ष के जो निवासी हैं, ये तो सब भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ये सब लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो बहुत ऊंची स्थिति है। जितने वर्ष हैं भारत वर्ष को छोड़ करके, बाकी जितने वर्ष हैं, तो मुझे बताया गया है कि स्वर्ग से जब पुण्य वो क्षीण हो जाते हैं तो शेष पुण्यों को भोगने के लिए इन वर्षों में आते हैं। और जिन्होंने भारतवर्ष में रह करके भक्ति अच्छी कर ली है, भक्ति जो है अपनी मजबूत बना ली है, तो स्वर्ग में जाकर के भी वे भोगों में आसक्त नहीं होते हैं, वो उनकी भक्ति चलती रहती है। तो स्वर्ग से भी कोई जा सकते हैं वैकुंठ में, और जो बाकी जो वर्ष हैं तो यहाँ भी वो भक्ति का संस्कार जो है उनका नष्ट नहीं होता। स्वर्ग भी देवता ऐसा नहीं, स्वर्ग से कोई वैकुंठ नहीं जा सकता। अगर भारत वर्ष में रह करके आपने भक्ति को प्रबल कर लिया है तो स्वर्ग में जाकर के भी जो है देवताओं का जो शरीर प्राप्त होता है, तो वे देवता लोग आते हैं पृथ्वी में भगवान की लीलाएं देखने के लिए। तो कई बार वर्णन आता है, चैतन्य चरित्र में वर्णन आता है, कृष्ण के चरित्र में वर्णन आता है कि ऊपर से देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो चैतन्य भागवत में भी ये वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु सवेरे सवेरे जब उठते थे तो सब देवता लोग ऊपर से भगवान की लीलाएं देखने के लिए आ जाते थे, और जब भगवान रात्रि में विश्राम करने जाते थे अपने घर तो देवता लोग भी अपने अपने स्थान में वापस चले जाते थे। तो दिन भर भगवान की लीलाएं देखने के लिए आते थे, तो वो देवता लोग स्वर्ग में ही रहते हैं, लेकिन स्वर्ग के भोगों में वो आसक्त नहीं है, और वो अपनी पूरी चेतना में है और वो भक्ति का पूरा लाभ उठाते हैं, और स्वर्ग में जो देवताओं का जो जीवन होता है उसकी सुविधाओं का लाभ वो भक्ति में उठाते हैं। उनके पास इतना, अगर वो अपना जो है दृष्टि का उपयोग करें तो उनको पता चल जाता है कि भगवान का अवतार कहाँ हुआ है। तो स्वर्ग के जो देवता लोग हैं वो भगवान की लीलाएं देखने के लिए आते हैं पृथ्वी में, या आकाश से देखते हैं भगवान की लीलाएं, वो भ्रमित नहीं होते हैं। जो पाखंडी है वो अपने को भगवान कहे तो देवता लोग उसकी भी पूजा, उसको उसका भी दर्शन करेंगे कि भाई ये पाखंडी भी भगवान हो सकता है, तो वो जो है ऐसे भ्रमित भी नहीं होते हैं। किसी भी पाखंडी को भगवान बना दिया जाए तो स्वर्ग के देवता नहीं आएंगे उसके ऊपर फूल होंगे वर्षा करने के लिए। हाँ जी, देवता लोग भी आते हैं स्वर्ग से, और जो सामान्य जो भारतवर्ष से आए हैं कुछ देवता तो ऐसे हैं जिनको एक मन्वंतर के लिए जो है कुछ प्रशासन का कार्य दिया गया है, तो वो देवता हैं जो स्वर्ग में रहते हैं, उनके अलग अलग लोग भी होते हैं। और कुछ देवता हैं जो कि अपना पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग में आते हैं, तो भारतवर्ष में पुण्य करके वो जाते हैं तो स्वर्ग में अपने पुण्य क्षीण करने के लिए जाते हैं, तो वो भी देवता हैं। तो इनकी बात बताई जा रही है कि ऐसे जो भारतवर्ष में हैं जिन्होंने भक्ति को अपना अच्छा सुरक्षित कर लिया है, मजबूत कर लिया है, वो स्वर्ग में भी वो भ्रमित नहीं होते हैं। नौ से पहले चलना शुरू कर दिया जाए, अभी नौ भी नहीं बजा है, सब लोग जाना शुरू कर दिया है। कम से कम 9 बजे तक बैठे तो 9 बजे तक भी नहीं बैठने के लिए तैयार हैं। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो मैं प्रश्न करूं। ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। यहां मायामय शब्द, सुखदेव गोस्वामी भगवान के लिए मायामय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो सामान्य व्यक्ति हैं या मायावादी हैं वो इसका क्या अर्थ निकालते हैं, उसका क्या वो इस तरह से कैसी व्याख्या करते हैं, कौन बताएगा? हाँ जी माता जी, जो मायावादी लोग हैं वो मायामय शब्द की ऐसी व्याख्या करते हैं कि भगवान कृपामय हैं? नहीं करते। मायावादी लोग क्या व्याख्या करते हैं? माया का शरीर है, अनित्य है, मिथ्या है, वो भगवान को भी अनित्य मिथ्या, तो ये क्या है? भगवान के प्रति क्या है? सेवा है, अपराध है? क्या है? अपराध है। तो शास्त्र में हाँ, किसी शब्द का अगर प्रयोग किया गया है तो उसे कई अर्थ होते हैं, तो हमें वो अर्थ स्वीकार करना है जो शास्त्रों के अनुसार हो। हैं? शास्त्रों के विरुद्ध कोई अर्थ है हमें नहीं निकालना चाहिए, है ना। तो यहां प्रभुपाद ने इसलिए तात्पर्य में बड़ा जो है लंबा तात्पर्य दिया, बल्कि पूरा तात्पर्य इसी पर ही दिया। आप सोचिए, इस श्लोक में तो बहुत सी बातें हैं, बहुत से बिंदु हैं, एक बिंदु को जो है प्रभुपाद ने कितना कर दिया, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि हम जो है रास्ते से भटके नहीं, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, सुनाना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं बहुत आवश्यक जानना कि हर जगह ये मायावाद फैला हुआ है, हर जगह मायावाद फैला हुआ है। इसलिए धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।